राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। जहाँ तक हमने ये श्लोक के ऊपर श्री भक्तिवेदांत तात्पर्य से पढ़ा है, श्री प्रभुपाद जी का मेन पॉइंट, मुख्य मुद्दा इसमें ऐसा है वित्त अर्थात धन। इस भौतिक जगत में उसका बहुत ही महत्व है और इसीलिए जब कोई निर्धन बन जाता है तो व्यक्ति सोचता है कि मैं खुद नष्ट हो गया, अब मेरा कुछ नहीं बचा। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी समझने लायक है कि जीवन में हम कोई भी चीज कष्टमय क्यों ना हो, उसको हम स्वीकृति तब दे सकते हैं जब हम देखते हैं कि इस कष्ट को स्वीकार करके मुझे भविष्य में कुछ लाभ मिलने वाला है। आज के लिए कष्ट है लेकिन कल कुछ अच्छा होगा। इसी लॉजिक से, इसी तर्क से श्रील प्रभुपाद जी षड गोस्वामियों के बारे में बताते हैं कि ये गोस्वामी बड़े बड़े मंत्री पद पर थे, मंडलपति श्रेणिम, और चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में सब सम्मिलित हो गए। त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणिम सदा तुच्छवत, त्वरित तुरंत हम में से भी कई भक्तों का अनुभव होगा ऐसे कि अगर किसी को पूछा जाए कि आपने ये हरे कृष्ण आंदोलन कैसे ज्वाइन किया, तो कई अर्थात ज्वाइन का मतलब केवल फुल टाइम मंदिर में ही ज्वाइन होना नहीं, किसी भी अवस्था में, चाहे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, हम सबका अनुभव यह होगा कि एक समय इस आध्यात्मिक जीवन की एक ऐसी रुचि पैदा हो गई जीवा पर अपने कि उस क्षण के लिए कम से कम हमारे मन में यह निर्धार हो गया कि यही वास्तविक चीज है। भले वो टेस्ट, वो रुचि शायद अब थोड़ी सी बोझिल हो गई हो या थोड़ा सा उसमें एक मेमोरी हो गई हो पास्ट की, होता है ऐसे। साधना भक्ति का मार्ग ही ऐसा है। जब नारद मुनि को भगवान ने दर्शन दिए, और कितने समय तक दर्शन दिया उनको, जैसे बिजली दिखती है हमको आकाश में, ऐसे दर्शन हो गया, लेकिन उनको सुन सके वो अच्छी तरह से। और भगवान ने कहा कि इस जीवन के लिए यही काफी है, अब आप मुझे देख नहीं पाओगे। तो उनके मन में ये दर्शन की अभिलाषा नहीं हुई, अर्थात भगवान के भक्तों के मन में भी दर्शन की अभिलाषा होती है, लेकिन वो जो आजकल जिस प्रकार से भावुकता है या लोकप्रिय अर्थात नॉट इन रियल सेंस, लेकिन लोगों में लोक प्रचलित भावना जो है कि भगवान के दर्शन हो गए तो सब कुछ हो गया। और नास्तिक लोग पूछेंगे, आपने भगवान को देखा है, भगवान का दर्शन किया है आपने? इसमें यह भाव होता है कि ये मेरी आंखें बहुत महत्वपूर्ण है और इन आंखों का देखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी तो अन्य इंद्रियां भी हैं, कर्मेंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों में बाकी इंद्रियां भी हैं, जीवा भी है हमारी। तो श्री प्रभुपाद का ये काउंटर लॉजिक होता था, देखना क्यों चाहिए भगवान को, चख सकते हो भगवान को, यू कैन टेस्ट हिम। तो पहली बार मैंने जब पढ़ा ये कि हाउ टू टेस्ट गॉड, ये भगवान को चखने की क्या अजीब बात करते हैं ये लोग। तो प्रभुपाद कहते थे प्रसाद लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान के कीर्तन में गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि इससे हम सुन सकते हैं भगवान को, जो देखने इतना ही पावरफुल है। और बार बार जप करने से जिह्वा को भी एक प्रकार की रुचि आती है, एक टेस्ट आती है। कई अच्छे संकीर्तनिया भक्तों के बारे में कहते हैं कि उनको बहुत टेस्ट है होली नेम में। ये लोकनाथ स्वामी महाराज के बारे में एक भक्त बता रहे थे कि ये 3.5-4.5 घंटे तक कीर्तन कर सकते हैं, या इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, उनको बहुत टेस्ट है। बिना टेस्ट के आदमी बार 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 वही काम नहीं करेगा। तो ये वेद शास्त्रों की बात है, ये कोई नई डिस्कवरी या नई बात नहीं है, लेकिन इतने सालों में ठीक से ट्रेनिंग नहीं दिया गया और ऊपर से नॉवेल फिल्म इस प्रकार के मीडियम द्वारा अपप्रचार होने से ये जो दर्शन की बात है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। और प्रभुपाद कहते हैं एक दृष्टि से कि अपनी आंखों पर इतना अवास्तव, आउट ऑफ प्रोपोर्शन स्ट्रेस देना ये भी एक घमंड की बात है। एक लेक्चर में रूपा जी कहते हैं कि क्या शक्ति है आपकी आंखों में कि आप भगवान को देखने की बात कर रहे हैं, ये लाइट चले गए आप अपनी उंगलियों को नहीं देख सकते, और भले कितनी भी रोशनी हो ये दीवार के पीछे क्या है नहीं देख सकते। और समस्त, जैसे प्रभुपाद जी एक दृष्टि से सारे साइंटिस्ट लोगों को आह्वान दे रहे हैं, अगर रात हो गई तो क्या आप सूरज को देख सकते हो? आज तक कोई साइंटिस्ट अपने टेलीस्कोप से, कोई भी स्कोप से या किसी भी प्रकार से, आज इधर रात है और उसने ढूंढ के निकाला कि सूरज पृथ्वी के उस बाजू में कहां पर है? इतना सब पावरफुल है ये सृष्टि का मैकेनिज्म कि हम अपने ढंग से कुछ नहीं कर सकते। अभी सूरज है ना, लेकिन दिख नहीं रहा है वो, क्योंकि उसको बादलों ने ढक दिया है। तो क्या बादल सूर्य से ज्यादा शक्तिशाली हो गए? एक दृष्टि से हां, सन इज वेरी लार्ज, सूर्य बहुत शक्तिशाली है, विशाल है बहुत, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, आज सूरज को बादल ने मात दिया है, देखो आप कहीं भी जाओ सूरज नहीं दिखाई देगा। ये रही एक लेवल की धारणा, एक लेवल से, ये बाल बुद्धि कहते हैं इसको। बाल बुद्धि मतलब केवल बच्चों की नहीं, एडल्ट्स भी अगर ऐसे ढंग से सोचेंगे तो उनको भी बाल बुद्धि कहते हैं। कई बार गीता भागवत में किसी व्यक्ति ने अगर कुछ कहा तो उसको कहते हैं कि बाला, ये तो बच्चों सी बातें कर रहा है। तो ये अगर बाल बुद्धि है तो फिर मच्योर इंटेलिजेंट बुद्धि क्या है? फिर आप में से कोई बता सकता है कि अगर इस स्टेटमेंट को हमको काटना है कि सूर्य को आज बादल ने पराभूत कर दिया है, डिफीट कर दिया है, आज बादल ज्यादा पावरफुल हो गए, इसलिए आज बादलों ने सूरज को ढक दिया है। क्या है इसका आंसर? थोड़ा सोचिए। अच्छा, इनका ये लॉजिक है कि अगर हम दूसरे किसी प्रदेश में जाएंगे तो वहां पर देख सकते हैं कि सूरज है। ठीक है, दूसरी जगह न जाते हुए यहां पर भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में बैठकर ये सही लॉजिक है। बोलिए। इसका मतलब यह हो गया कि सूरज कम शक्तिशाली नहीं हो गया है, हम इतने क्षुद्र हैं, हम इतने इनसिग्निफिकेंट हैं कि हमारी इन आंखों के सामने ये बादल अपना सब चमत्कार दिखा सकते हैं। हमारे लिए बादल बहुत पावरफुल है, सूरज से भी कुछ समय के लिए। सूरज के सामने बादल कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से समझना चाहिए कि माया कितनी भी पावरफुल हो, इग्नोरेंस, अविद्या, इल्यूजन, माया, ये कितनी भी पावरफुल हो, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, षड रिपु कितने भी शक्तिशाली हो, वो शक्तिशाली केवल जीव के रिलेटिव स्ट्रेंथ के अनुसार है। जीव छोटा है, उसके लिए उसी लिए ये बाकी शक्तियां जीव को कुछ समय के लिए रोक सकती है। लेकिन अगर कृष्ण की शक्ति, कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। माया के, कृष्ण के सामने माया कुछ भी नहीं है। जैसे ये सूरज कुछ समय के लिए बादल को, और दूसरी बात है, ये बादल बनाया किसने? सूरज से ही बनता है बादल, कोई और इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। तो माया भी भगवान की ही शक्ति है, और भगवान की ही आज्ञा से उसको यहां पर काम करने के लिए बोला गया है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान बताते हैं ये मेरी माया है। तो कुछ दिन पहले, इस रविवार को एक्यूरेटली बताना है तो, इन गोस्वामियों में से, षड गोस्वामियों में से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव दिन था। ये एकमात्र गोस्वामी थे जो दक्षिण भारत से थे, और महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए थे तब श्रीरंग क्षेत्र, श्रीरंगम, यहाँ पर एक बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार ने उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा अभी ये चतुर्मास चल रहा है तो आप रहिए हमारे साथ। तो महाप्रभु वहाँ रुके रहे। वेंकट भट्ट, तिरुमल भट्ट, और बाद में तीसरे भाई थे उनके जो प्रबोधानंद सरस्वती के रूप में प्रसिद्ध हो गए। महाप्रभु ने उस समय उनके, वेंकट भट्ट के छोटे पुत्र श्री गोपाल, उसको बहुत सेवा दी। वो उनके चरण सेवा करता था, उनको जो भी कुछ चाहिए लाके देता था। उस समय जबकि महाप्रभु रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से नहीं मिले थे, महाप्रभु ने गोपाल से कहा कि आप बड़े होने के बाद वृंदावन जाना, और वहां पर आपको रूप सनातन मिलेंगे। तो कई इतिहासकार जब इसको पढ़ते हैं तो उनके मन में बड़ा अचरज पैदा होता है। वो कहते हैं कि या तो ये डेट्स इनएक्यूरेट है, क्योंकि जो चीज, जो घटना कुछ सालों बाद घटने वाली है, वो महाप्रभु आज कैसे बता रहे हैं कि आप जाकर वहां पर उनको मिल लेना। तो जो लोग चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता को नहीं जानते, वो सोचते हैं कि शायद महाप्रभु रामकेली के बाद दक्षिण भारत गए, क्योंकि वहां पर उनको रूप सनातन मिले, और रूप सनातन का नाम तब तक रूप सनातन भी नहीं था। वो जिस नवाब के यहाँ काम कर रहे थे, तो एक थे डबीर खास रूप गोस्वामी, और सनातन गोस्वामी का नाम था साकर मलिक। तो अपने पिता माता को परम वैष्णव जानकर गोपाल भट्ट ने उनकी बहुत अच्छी सेवा की और वृद्धत्व और यथासमय उनके शरीर की यात्रा समाप्त होने पर गोपाल भट्ट वृंदावन आ गए। वृंदावन आने पर महाप्रभु ने बहुत प्रेम से उनके लिए अपना आसन और बहुत सारी चीजें भेजी। तो भक्तों को पता चला कि ये जो भक्त है जिनको महाप्रभु ने इतना कुछ दिया है ये बहुत प्रेमी भक्त है, बहुत प्रगत वैष्णव है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी से हम एक बात सीख सकते हैं, वो इतने प्रसिद्धि परांगमुख थे, चैतन्य चरितामृत में उनका नाम तक नहीं आता। हालांकि दक्षिण भारत की कई घटनाओं को उन्होंने ही बताया कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, और बहुत कुछ चीज जानते थे वो। तो उनकी कंडीशन क्या थी, एक शर्त थी उनकी कि अगर कुछ जानकारी पाना है मुझसे तो याद रखना इस किताब में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। और आज कई लॉ सूट होते हैं कि इसमें मेरा नाम क्यों नहीं है, मैंने इतना कुछ किया है। तो ये एक डिफरेंस, ये एक भेद हम देख सकते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी अनेक भक्तों के वहां पर आश्रय थे और खास करके उनके पास शालिग्राम शिलाएं थी। कई भक्तों ने शालिग्राम शिला देखी भी होगी या उनकी पूजा भी की होगी। शालिग्राम एक भगवान विष्णु का ऐसा अद्भुत रूप है जो छोटे छोटे गोल शिला पत्थर के रूप में, खास करके गंडकी नाम की एक नदी है वहां पर प्राप्त होते हैं ये। और उसमें शिला के ऊपर कभी कभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक के अंदर एक ऐसे सर्कल्स होते हैं। वैदिक संस्कृति में सन्यासी ब्रह्मचारी सदैव ब्राह्मणों के घर जाकर भिक्षा मांगते थे, क्योंकि इतनी गारंटी थी कि जो प्रसाद मिलेगा वो प्रसाद होगा, जो भी भोजन मिलेगा वो शालिग्राम का प्रसाद होगा, क्योंकि हर घर में शालिग्राम तो होना है ही। और विवाह के बाद नव दंपत्य को विवाह के बाद ही एक शालिग्राम मिलता था कि ये आपके लिए, आप इसे पूजा करो। तो ऐसे कई पीढ़ियों तक कई घरों में ये शालिग्राम सेवा चलती आ रही है। एक बार एक भक्त बता रहे थे कि कैसे भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु ये केवल एक ही अंग से हम उनको नहीं देख सकते। तुलसी देवी जो है, मैं क्यों बता रहा हूं एक ही अंग से, कि तुलसी देवी हमेशा भगवान के चरणों में होती है ना। ऐसा कहते हैं कि अगर आपको भगवान के चरणों के बारे में पूछना है कि भगवान के चरण कैसे हैं, तो तुलसी से पूछते हैं, क्योंकि उसका निवास सदैव उदय होता है। तुलसी भगवान चरणों के ऊपर कभी जाती नहीं। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि उनको हमेशा जो भक्त ने कुछ किया है मेरे लिए तो उसका एक रेसिप्रोकेशन, कुछ आदान प्रदान करने की इच्छा होती है। तो एक भक्त बता रहे थे विष्णु या कृष्ण की मूर्ति श्री विग्रह के रूप में भगवान कृष्ण या विष्णु हमेशा तुलसी को चरणों में रखते हैं, लेकिन शालिग्राम के रूप में वो उसको अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट है कि भगवान हमेशा जिसने जो कुछ किया है उसको एक प्रतिफल देने की भी इच्छा रखते हैं। तो अगर इस रूप में आप मेरे हमेशा चरणों में हो तो इस रूप में मैं आपको मेरे मस्तक पर भी धारण कर सकता हूं। तो शालिग्राम की जो सेवा पूजा है उसके लिए श्री प्रभुपाद जी ने बताया था केवल टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, तुलसी गंगा जल बस, एंड द मेन इंग्रेडिएंट इज डिवोशन, भक्ति भाव। चैतन्य महाप्रभु को इस धराधाम पर लाने के लिए श्री अद्वैत आचार्य ने केवल एक ही विधि का पालन किया, वो है शालिग्राम की उपासना। हूंकार गर्जनार्थ अहोरात्र भाजनम, अद्वैत आचार्य गंगा नदी के तट पर तुलसी देवी, तुलसी दल और गंगा जी का जल अर्पण करके गर्जनार्थ अति जोर से चित्कार रहे थे भगवान को, आप आइए आप आइए, आपके अलावा इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। ये स्वयं महाविष्णु हैं और वो कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको आना ही है, आपको आना ही है। गंगा वारी मनोहारी तुलस्यादि मंजरी, तुलसी तुलसी की मंजरी खास करके वो शालिग्राम को ज्यादा प्रसन्न करते हैं। तो एक नरसिंह चतुर्दशी के उत्सव पर एक व्यक्ति ने बहुत सारे गहने आभूषण अलंकार वस्त्र इत्यादि सब गोस्वामियों के मंदिर में बांटना शुरू कर दिया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में ही विचार आ गया कि सबके लिए कितना अच्छा है, राधा गोविंद जी के लिए कुछ मिल रहा है, राधा दामोदर के लिए कुछ है, हमारे तो केवल शिला है, शिला को क्या दे सकते हैं, कोई शिला को अर्थात अर्पण करते हैं मुरली एक मुकुट, लेकिन फिर भी एक मन में इच्छा होती है कि इनको अगर अच्छी तरह से सब अवयव होते अंग होते तो मैं अच्छी तरह से श्रृंगार कर सकता था। तो दूसरे दिन वो देखते हैं कि दामोदर नाम की शिला, वो तो उसमें से भगवान कृष्ण की मूर्ति प्रकट हो गई और सारे वृंदावन में ये बात फैल गई, सब दर्शन करने के लिए आतुरता से आ गए। वृंदावन में जो विग्रह है मुख्य, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, तो ऐसा कहते हैं कि मदन मोहन जी के जो चरण हैं वो और भगवान कृष्ण के वास्तविक चरण, जैसे भगवान कृष्ण इस धरती पर थे, वो बहुत मिलते जुलते हैं एक्यूरेटली। गोविंद जी का जो कटी प्रदेश है और मध्य भाग है वो भगवान कृष्ण के शरीर के साथ मिलता जुलता है, और गोपीनाथ जी का जो मुख है और भगवान कृष्ण का मुख, लेकिन ये तीनों इस विग्रह में विद्यमान थे। तो इसके लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने बाकी सीनियर भक्तों से पूछा कि इनका क्या नामकरण किया जाए, तो इनका नाम रखा गया राधा रमन, और राधा रमन देव के लिए फिर बहुत अच्छी तरह से उनकी सेवा पूजा आरंभ कर दी गई। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने एक गोपीनाथ पुजारी नाम के एक भक्त से कहा कि आप सेवा स्वीकारो, लेकिन उन्होंने फिर विवाह नहीं किया, तो उनके भाई उन्होंने उनके असिस्टेंट के रूप में सेवा स्वीकारी स्वीकार किया और उनका विवाह भी हो गया था। तो आज तक जो राधा रमन के पुजारी हैं वो इन भाई के परिवार से आए हुए हैं। अभी तो उनका परिवार मिलकर 400-500 उधर सदस्य हो सकते हैं, वो सब आसपास ही रहते हैं। राधा रमन घेरा पहले उनका घर था वो, और खास करके जो अर्चना पद्धति की जो उनकी विधि है बहुत ही एक्यूरेट बहुत ही ऑथेंटिक ऐसी है, विश्वासार्ह है और एक्यूरेट है। ऐसे हमने सुना है कि किसी एक हर एक फैमिली का अपना टर्न होता है, एक एक वर्ष के लिए मिलता है चांस। तो एक फैमिली मतलब माता पिता स्त्रियां तो अंदर नहीं जाती विग्रह ऑल्टर पे, लेकिन बाकी तो सेवा कर सकते हैं सब लोग, लेकिन जो पुरुष सदस्य हैं जो सेवा करते हैं वो सब मिलकर सारा त्यौहार उत्सव सब मनाते हैं, और जिस दिन जिस समय हैंडिंग ओवर होता है दूसरे परिवार के लिए, तो कई दिनों तक वो पूरा लेखा जोखा एक एक ये पंचपात्र है ये एक छोटी छोटी चीजों को भी अच्छी तरह से डिटेल में नोट करके, क्योंकि बहुत सारी चीजें सब चांदी की है या कुछ सोने की है, जो मंदिर का जो मुख्य कोष है उसमें तीन तीन चाबियां होती हैं जो अलग अलग भक्तों के पास होती है। तो श्रील प्रभुपाद ने काफी सराहना की थी राधा रमन देव के इस टेम्पल मैनेजमेंट के बारे में, और क्योंकि उन्होंने गोपाल भट्ट के साथ इतना घनिष्ठ संबंध रहा उनका, गौड़ीय वैष्णव मूवमेंट, गौड़ीय मठ या इस्कॉन के साथ भी राधा रमन मंदिर हमेशा बहुत प्रेम सद्भावना का संबंध रखता आ रहा है। भक्ति सिद्धांत सरदेव ठाकुर ने जब अपनी गौर मंडल, अपनी ब्रजमंडल भूमि प्रदक्षिणा परिक्रमा आरंभ की थी, तब कुछ मंदिरों ने देखा कि ये सिद्धांत सरस्वती लोगों को लेके आ रहे हैं ब्रज में, लेकिन उनके पास तो सारे वर्णों के लोग हैं। तो उन्होंने अपने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए थे कि यहाँ सबके लिए प्रवेश नहीं है। ये 1918-1920-25 की बात है। लेकिन राधा रमन में ये ऐसा नहीं हो गया, उन्होंने मंदिर के द्वार खोल दिए, बोले आइए दर्शन कीजिए। तो पहले से बहुत मच्योर, बहुत प्रोग्रेसिव इस ढंग के भक्त रह चुके हैं वो। आज हम आगे पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद जी भाग में दूसरा मुद्दा उपस्थित करते हैं। द सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉडहेड हैज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद मटेरियल एक्टिविटीज। ऑल हिज एक्ट्स एंड डीड्स विच आर एग्जिबिटेड इवन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड आर स्पिरिचुअल एंड विदाउट अफेक्शन फॉर द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। इन द भगवद गीता द लॉर्ड सेज दैट ऑल हिज एक्ट्स इवन हिज अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस इन एंड आउट ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड आर ट्रांसेंडेंटल एंड वन हू नोज दिस परफेक्टली वेल shall not take his birth again in this material world, but will go back to Godhead. एक दृष्टि से हमारे इस उदाहरण को पकड़ते हुए कि सूर्य, बादल और भौतिक जगत, तो ये मुद्दा फिर मैं उपस्थित कर रहा हूं। बादल तब तक शक्तिशाली है जब तक आप छोटे हैं। छोटे का अर्थ है आप बादल के नीचे हैं, या आपकी दृष्टि छोटी है, या आपका ज्ञान छोटा है। एक हेलीकॉप्टर के जरिए अगर हम ऊपर जाते हैं बादल के ऊपर, तब अगर आप उधर पेपर पढ़ेंगे कि बहुत बारिश हो रही है, इतना पानी फंसा हुआ है, तो वो डिस्क्रिप्शन हमको तो लागू नहीं होता। या अगर हम मोबाइल से किसी बात करेंगे, वो करें अभी भी बारिश हो रही है बहुत, तो आप कहेंगे कहाँ है, क्योंकि वो जो बरसात हो रही है वो आपके नीचे है। तो इसीलिए भगवान जब अवतार लेते हैं, तो भगवान को यहां के जो भौतिक जगत के कार्यकलाप, भौतिक जगत के नियम, भौतिक जगत की पाबंदियां, यहां के ऑब्स्टेकल्स, ये कुछ, इसका कुछ काम नहीं होता, या इससे उनको कोई सरोकार नहीं है। हिंदी में कहा गया है जो शब्द, इसलिए इस जहां अभी हम जिसके पर चर्चा कर रहे हैं वो है दूसरे लाइन का, नमो अकिंचन वित्ताय के ऊपर चर्चा हो गई है, निवृत्त गुण वृत्त ये आवृत्त। आवृत्त का अर्थ होता है कवरिंग, कवरिंग पूरा कवरिंग। एक भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, धूमे ना व्रियते वहनिर यथा दर्शो मलेनच यथोर बेना वृथो गर्भस तथा तेनेदम आवृतम। ये जो इग्नोरेंस है, ये जो अविद्या है, क्या है ये, कैसे ये हमको ढकती है। तो भगवान कृष्ण का उदाहरण है एक, किसी पुराने घर में या किसी पुराने कमरे में जहाँ पर बहुत धूल जमी हुई है, और वहाँ पर कोई अलमीरा है और उसमें सामने एक आईना है, बड़ा मिरर, लेकिन हम उस मिरर में, इस आईने में देखना चाहते हैं तो क्या दिखता है, केवल धूल। तो धूल की वजह से क्या वो आईना खराब हो गया है या उसको फेंकना चाहिए? उसका फंक्शनिंग, उसका काम इसलिए रुक गया है क्योंकि वो एक धूल का कवरिंग है, उसको अगर मिटाएंगे गीले कपड़े से तो फिर से हम अपने आप को देख सकते हैं। धूमे ना व्रियते वहनीर, आग लगी है लेकिन इतनी आग शुद्ध नहीं है तो इसलिए ज्यादा धुआं निकल रहा है, तो धुएं से आग की लपटें जो है, आग का ज्योति जो है वो ज्योति को ढका दिया गया है। और तीसरा उदाहरण भगवान का है, यथुल बेणा वृथा तो गर्भस, एक स्त्री के गर्भ में जैसे एक स्त्री के उदर में जैसे गर्भ बढ़ रहा है, इन तीन उदाहरणों को भी हम सत्व रज तम के अनुसार देख सकते हैं। धुआं और अग्नि, लगभग अग्नि दिख ही रहा है, केवल धुआं थोड़ा सा दिख रहा है। आईना मिरर और धूल, थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ता है, कुछ साफ करने से ही चेहरा दिखाई देगा। लेकिन एक स्त्री के गर्भ में जो उदर में जो गर्भ है उसको एक्सरे के बिना नहीं देखा जा सकता। तो सात्विक आवरिंग रजोगुणी, सात्विक कवरिंग, रजोगुणी कवरिंग और तमोगुणी कवरिंग, ये ऐसे एक से एक बढ़कर डिग्री में जाते हैं। सत्वगुण में भी वो कवरिंग है, ऐसा नहीं है कि सत्वगुणी होने से आदमी भगवान को समझ सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि कोई ऐसे है जो वो नाम जप वगैरह नहीं करते और नियम वगैरह भी पालन नहीं करते पूरा, लेकिन बहुत दिल से बहुत अच्छे हैं। कभी कोई व्यक्ति ने ऐसे कोई बड़ा अपराध नहीं किया होता है तो मन में ये कभी शंका होती है कि इनके बारे में क्या कहना है, फिर इनको भगवान का भक्त नहीं कह सकते, लेकिन ये पापी अपराधी तो भी नहीं है। लेकिन गीता के अनुसार कोई आज सत्वगुण में है और सत्वगुण को टिकाए रखने में असफल है तो बहुत इजीली वो रजो और तमोगुण में जा सकता है। रजोगुण तमोगुण तो डेफिनेट निगेटिव है ही, जैसे कोई प्रश्न उपस्थित होता है कि चाय क्यों नहीं पीना चाहिए, चाय तो हार्मलेस चीज है। कई जगह जाते हैं तो साधु संत भी पीते हैं चाय, क्या प्रॉब्लम है, और चाय तो वेजिटेरियन है ना, वो तो पत्ती है, कोई पत्ते हैं, क्योंकि उसमें वो रजोगुण है चाय में कॉफी में। तो कोई कहेगा ये रजोगुण से क्या बड़ा नुकसान होता है, हम तो जाप तो करें ना, ठीक है, नाम जप करना बड़ी अग्नि प्रज्वलित करने जैसा है, लेकिन आज जैसे इतना बारिश हो गया है और अगर हम कहीं से लकड़ी लाते हैं और कहते हैं कि इसको जलाओ तो जलेगी वो तुरंत, 12 घंटा बरसात में भीगी हुई लकड़ी है, वो कैसे जलेगी। वो मान लीजिए कहीं यात्रा में गए, 4000 लोग हैं उधर और सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना है और ऐसी लकड़ी को लगाए तो 300 वर्ष होंगे लेकिन हमारी खिचड़ी पकेगी नहीं कभी। हम पूछेंगे भक्तों से, अभी क्लास तो खत्म हो गई है, अभी ब्रेकफास्ट कुछ है कि नहीं, बोला हाँ देखिए ना इतना बड़ा बर्तन है उसमें चावल दाल सब डाला है और नीचे इतनी बड़ी लकड़ियां डालकर उनको जलाया है। तो ये गीली लकड़ी जलाने से केवल धुआं पैदा होता है, स्मोक, और स्मोक से तो कोई कुकिंग होता नहीं। तमोगुणी का अर्थ होता है, एक्चुअली प्रभुपाद ने दोनों को साथ ही पकड़ा है, रजो और तमोगुणी का मतलब है लकड़ी को गीला करना, लेकिन कभी कभी तमोगुण तो वास्तविक डेंजरस, मतलब मांस इत्यादि आहार, मीट फिश एग्स, वो केवल रजोगुणी नहीं है, वो तो डायरेक्टली तमोगुणी है और ऊपर से अपराध भी है। कई वेजिटेरियन चीजें ऐसी है जो अपराध नहीं है, जैसे कोई लोग कहते हैं कि ये जो तंबाकू टोबैको है वो तो क्या है, वो तो भी तो पत्ती है। हमारे भक्त कहीं गए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और फैक्ट्री थी और वहाँ पर जो वर्कर लोग थे उनके लिए कुछ कैंप रखा गया था भगवद गीता के साथ साथ। उनके मैनेजर ने कहा ये सब लोग दिन भर 50 बार तम्बाकू खाते रहते हैं, आप उनको समझाइए कुछ। तो उसमें से एक किसान था, उसकी खेती थी और उधर काम भी करता था। उसने कहा एक बात बताता हूँ आपको मैं भाई, शायद आप शहर के लोग हैं आपको मालूम नहीं होगा। वो बोला क्या बात है? बोला मैं देखा हूँ जहाँ तम्बाकू उगाते हैं, तम्बाकू अभी एक पेड़ होता है उसके पत्ते आते हैं, वो पत्तों को बाद में सुखा कर या कैसे भी करके उसका कुछ करते हैं। वो बोलते हैं जैसे ज्वारी हो, बाजरा हो, चावल हो, गेहूँ हो या बाकी जो कुछ हो, उनके लिए हमेशा हमको फेंसिंग करना पड़ता है, कांटे वगैरह लगाने पड़ते हैं ताकि बाकी कुछ भी फल के पेड़ हों या फूल के पेड़ हों, तो हमेशा गाय बकरी भैंस इससे बचाने के लिए कुछ करना पड़ता है। बोले लेकिन हमने ये देखा है कि ये तंबाकू के पत्तों को गाय नहीं खाती, बकरी नहीं खाते। तो बोले ये हमको आश्चर्य लगता है कि ये पशु भी नहीं खाते तंबाकू को, और आदमी सोचता है कि इसमें कुछ है या इसमें इसमें क्रिएटिविटी है, ऐसे दिखाते हैं ना, कोई बहुत सोच रहा है और हाथ में उसमें एक। आज तक जितने विचारवंत हुए व्यास देव उनके साथ बाकी गुरु वगैरह सब ऋषि मुनि, उनका विचार कितना उच्च था और उनकी विचार जीवन भर विचार कर रहे थे वो, उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी सिगरेट की कि अभी क्या करें, ये बहुत हेवी फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है, ये क्या करना चाहिए। और आजकल कोई बिजनेस का सोल्यूशन है, कोई पैसा कहीं से मिले, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें, ये सब डिस्कशन करने के लिए सिगरेट पे सिगरेट पीते रहते हैं या साइंटिस्ट लोग हैं। ये केवल इस तमोगुण का प्रभाव है। तो रजो तमोगुण तो ऐसे डायरेक्ट नेगेटिव है ही, सत्वगुण में क्या प्रॉब्लम है? सत्वगुण तो अच्छा है ना। हमने डिस्कशन ये शुरू किया था कि कई बार लोग कहते हैं कि हम भक्त नहीं बनेंगे, लेकिन हम तो हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, हम कोई पाप अपराध नहीं करते। एक सिंपल उदाहरण से समझ में आएगा। किसी व्यक्ति को अभी इस समय मीरा रोड से निकलकर संता क्रूज सहार एयरपोर्ट जाकर फ्लाइट पकड़नी है, अगर उसकी गाड़ी उसकी मोटर कार यहीं पर अंधेरी फ्लावर के उधर ही फिसल गई या उधर ही ट्रैफिक जाम में फंस गई, तो ये समझ लेना चाहिए रजोगुण तमोगुण जैसा कि वो व्यक्ति अपने एयरलाइन तक पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन समझो कोई गया एयरपोर्ट तक गया और वहां पर पता चला कि सब कुछ ठीक है लेकिन फ्लाइंग कंडीशन अच्छे नहीं है, इतना फॉग है, इतना ये है कि ये एयरलाइन जो है ये टेक ऑफ नहीं करेगी। तो सत्वगुण ऐसा है कि आपका टिकट है आपके हाथ में, आप एयरपोर्ट पे खड़े हैं, लेकिन वहां जाकर भी आपका एयरलाइन ने अगर टेक ऑफ नहीं किया, एयरलाइन का मतलब क्या है, वो विमान उड़ना चाहिए ना। अगर विमान तक पहुंच गए, किसी ने कहा कि विमान तक अंदर बैठे रहे हम कि आधे घंटे में छूटेगा, एक घंटे में छूटेगा, लेकिन वो परमिशन नहीं दे रहे, तो ये अवस्था होती है सत्वगुणित लोगों की। और जो वो सत्वगुण वहां से मिस हो गया समझो, तो फिर वापस इसी ट्रैफिक जैम में आना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सत्वगुण में रहे तो सत्वगुण में ही रहे, टिके रहे। अगर किसी ने ऐसा हो सकता है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थो, सत्वगुण में बहुत परिश्रम पूर्वक जीवन बिताकर कि कभी झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और सत्वगुण में उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो भगवान कहते हैं कि ठीक है उसका रिवॉर्ड मिलता है। उसका इनाम क्या है? ऊर्ध्वं गच्छन्ति, इस जीवन से थोड़ा सा अच्छा जीवन मिलता है, गंधर्वपुरी, स्वर्गलोक, अवंती, अमरावती, ये जो सब नंदन कानन उद्यान, ये सब भोगने के लिए मिलते हैं। मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, और रजोगुणी अगर जीवन हो गया, चले प्रभुपाद जी एक बार खास करके वार्निंग देते हैं देश प्रेम, समाज प्रेम, कुटुंब प्रेम, इस प्रदेश के लिए प्रेम, ये रजोगुण ही कहलाता है। फिर उधर ही जन्म मिलता है आपका और निश्चित ही कुछ लेसर होता है, कम होता है। कल ही एक वीडियो देख रहा था मैं पुनर्जन्म के बारे में, तो अमेरिका में सिविल वॉर हो गया था, यादवी युद्ध, तो एक फायर इंजन में काम करने वाले फायर फाइटर होता है ना, अग्निशामक दल, तो फायर इंजन में काम करने वाले व्यक्ति ने एक अमेरिकन वॉर मेमोरियल जहां पर 1880 में जो वॉर हुआ था उधर देखने गया, वो देखने गया, देखते गया तो सडनली उसको एकदम ऐसा लगा कि अरे ये सब परिसर, ये प्रदेश मेरा परिचय का है। और एक विशिष्ट स्थान पर उसको लगा कि मेरे पैर में कोई शक्ति नहीं है, और वो बोला मैं वहाँ पर 15 मिनट था, आधा घंटा था, 3 घंटे था, कुछ पता नहीं। और उसकी पत्नी कार में बैठी थी, तो कैसे करके वो एक्सपीरियंस निकल गया। फिर वो अंदर आके उसकी पत्नी ने पूछा क्या हो गया, आप ऐसे डरे हुए क्यों लग रहे हो, बोला नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, उसे पता नहीं था ये क्या हो रहा है करके। फिर दूसरे अब सप्ताह में उसको एक मैगजीन मिला सिविल वॉर, और उसमें पढ़ रहा था वो, उसमें देखा कि एक जनरल वो एक जगह पर मर गया, उसने कहा इसी जगह पर तो था मैं। फिर उसने वो जनरल का फोटो देखा, वो वीडियो में दिखाते हैं, उस व्यक्ति में और आज इस व्यक्ति में दोनों का चेहरा, दोनों की दाढ़ी बिल्कुल सेम। तो उसने अपने एक दोस्त को दिखाया, बोला ये दोनों में कुछ दिखता है आपको, बोला ये आपकी फोटो है क्या, बोला नहीं मेरे तो नहीं है ये। फिर उसके मन में एक ये आता था नॉट येट नॉट येट, तो उसने कहा ये नॉट येट किसने किससे कहा है, ये मेरे मन में बार बार यही सेंटेंस क्यों आ रहा है। फिर उसने उस अभी आदमी थोड़ा सा जिज्ञासु हो गया, तो पूछताछ करता, फिर वो पढ़ने लगा, तो वो जो जनरल जहां पर वो उसमें मरा नहीं था, वो इंजर्ड हो गया था, बाद में इंजरी की वजह से मर गया वो, उसके सोल्जर्स ने पूछा था कि अभी हम हमला करें क्या, सामने वाली पार्टी अभी आ गई हम हमला करें क्या, तब वो चिल्ला रहा था वहां पर नॉट येट नॉट येट नॉट येट, और लोगों ने उसको नोट भी किया था, वो आज भी है वो। फिर उसने और देखा कि ये कौन था जनरल, जनरल गॉर्डन जो मर गया 1890 में, उसका नाम था जनरल गॉर्डन, और आज जो आदमी है उसका नाम है जेफरी कीन, वो तो एक मामूली ड्राइवर है फायर ब्रिगेड में। तो उसने देखा कि जब ये जनरल इंजर्ड हो गया था तभी वो 30 साल का था, 30 साल का। अचानक उसको एक याद आ गया कि मैं जब 30 साल का था तभी सडनली मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर आ गया, हार्ट बीट में प्रॉब्लम हो गया, मैं मूर्छा आ गई, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो उसमें दिखाते वो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स कि ये व्यक्ति ऐसे ही कुछ सिम्टम लेके आ गया और 2 दिन में ठीक होकर चला भी गया, उसके बाद वो सिम्टम्स वो कभी आया नहीं उसको वापस बीमारी। तो ये जो वीडियो करने वाले टीवी प्रोड्यूसर्स हैं वो तो एकदम साइंटिफिक लोग हैं, तो उन्होंने उसका एक मशीन मिलता है पॉलीग्राफ करके, लाई डिटेक्टर, आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, ये आपके हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और पता नहीं कैसे वो जानते हैं वो। तो वो दिखाते हैं कि वो इस उंगली में वो सेंसर पकड़ के रखते हैं और उसको पूछते हैं क्या आपने सही देखा, बोलते हाँ, क्या आपको लगता है कि आप यही हो, हाँ। तो कम से कम ये लाय डिटेक्टर मशीन ने तो क्लीन प्रूफ दे दिया कि ये व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा है, ये व्यक्ति वही है। अर्थात आप बोलेंगे इसका इसका परिणाम क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट, रिजल्ट कुछ नहीं है, रीइंकार्नेशन कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड बात नहीं है, हमारे सबका हो गया है, हमको याद नहीं इतना ही है, उसको याद है एक दृष्टि से, खाली उसको याद है हमको याद नहीं है बस, और कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो एक जनरल था वो आज एक ड्राइवर बन गया है, मतलब नीचे आ गया ना उसका, कोई ऐसा नहीं था कि कोई पहले हाँ मैं पहले भिखारी था और आज मैं यहां पर बिल गेट्स बन गया हूं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मैं सोच रहा था कि ये गीता में बात सही बताई है, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, एकदम अच्छा काम भी नहीं है और एकदम पाप भी नहीं है, तो कहां जाओगे आप? उधर रहोगे जहां पर आसक्ति है। आत्मा को कहेगा कहां जाना है आपको? बस यही ठीक है, मीरा रोड, कुछ खास खराब तो है नहीं, थोड़ी गर्मी होती है, कभी पानी नहीं आता, लेकिन ऐसे अच्छे लोग हैं। बस आपने इच्छा की, इच्छा पूर्ण हो गई। और अच्छा कर्म भी नहीं है, रजोगुण भी नहीं है, तो प्योर तमोगुणी जीवन है, अगर अपराध और पाप का जीवन है। जगन्य गुण वृत्तिस्थो अधो गच्छन्ति तामसा, तो नीचे जाना ही पड़ता है। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं यहां का हूं, मुझे बहुत प्रेम है इसके ऊपर। अरे गाय का प्रेम, कोई गुनाहगार कहेगा कि मैं पेडर रोड का हूं, मुझे वहीं रखिए, उधर जेल बनाइए मेरे लिए, ऐसा तो नहीं होगा। जेल तो अपनी जगह पे होगा। तो रजो तमो गुण से तो निश्चित ही नुकसान है। सत्व गुण से कोई कहेगा फिर क्या प्रॉब्लम है, सत्व गुण में जाओ, पर मजा करो, आनंद लो। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे आप होटल में गए, मान लीजिए किसी ने पूछा कि ये होटल का भाड़ा कितना है रूम का, 2000 रुपए दिन का, तो बोले मेरे पास 6000 रुपए है, चलो ये पैसा लो और 3 दिन के लिए मुझे ये कमरा चाहिए अपने लिए। और फिर आप उस कमरे में घूम रहे हैं कि एसी चालू किया, टीवी चालू किया, फ्रिज में देखा क्या है, लेकिन जैसे वो घड़ी है वो टिक 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 हो रही है ना, वो घड़ी पीछे तो नहीं जा रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है आगे 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 आगे। तो आपने कहा कितना हो गया? अरे 10 बज गए, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे के लिए आपका वहां का ठहरना भी कम हो गया, रात को सोए तो 6 घंटे सोए, 8 घंटे सोए तो और कम हो गया। और जैसे ही तीसरे दिन का शाम का 6 बजे का समय आ गया, आपने जब 6 बजे उसको बुक किया था रूम, आप देखते हैं कि 4:45 बजे ही वो आदमी बेल बजा रहा है, साहब आपका सामान रखूं बाहर, कहां जाएंगे आप? आप बोलिए नहीं 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 मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे रिकॉर्ड के अनुसार तो आज 6 बजे आपका खत्म हो रहा है सब कुछ। बोले और थोड़ा कुछ रहने दीजिए ना। बोले बाहर लोग खड़े हैं, इस रूम के नए ऑक्यूपेंट खड़े हैं वहां पर। तब पता चलता है कि अरे ये रूम तो मेरा था ही नहीं, 3 दिन तक किसी ने तकलीफ नहीं दी मुझे, कुछ ने पूछा नहीं कि पैसा है कि नहीं कि नहीं, अब सडनली पूछ रहे हैं कितना पैसा है, और रहना है आपको तो और पैसा दीजिए। अब कहने और क्यों रहे, हमने दिया है उतना काफी है। अब बाहर निकलते हो कि सिक्योरिटी को बुलाऊं, तो हम कहते हैं कि अरे इतने प्रेम से बोलने वाले, 3 दिन पहले आए थे सब लोग हंस रहे थे, जी साहब क्या चाहिए, ये दूं, जूस लेंगे, कुछ सूप लेंगे, कि ये लेंगे कि वो लेंगे, सब पुण्य का जो तेल है मशीन में, इसलिए ये मशीन चल रहा है। और जैसे क्षीण पुण्य, जो देवता लोग आपके साथ इतने कुछ किए थे होंगे, सडनली आपको पहचानेंगे भी नहीं कि कौन है करके, क्यों? क्योंकि इसका पुण्य क्षीण हो गया है। एक्चुअली एक बात बताइए शास्त्रों में, कि ये बरसात होती है ना, दिस इज हाउ द फॉलन डेमिगॉड्स कम अगेन डाउन। तो हम कहेंगे बंबई में 920 मिलीमीटर वर्षा, समझ लेना चाहिए इतने लोग आ गए सब, जो बड़े बड़े पुष्पक विमान, जैसे विमानों में पुष्पक तो वैकुंठ का है लेकिन उसके सदृश विमान बनाते हैं, उस विमान में घूमने वाले और नंदन कानन अमृत पीने वाले, और जो भी हम भागवत के पन्नों में देखते हैं या पुराणों में पढ़ते हैं, वो सब अभी यहाँ पर, कोई इधर धारावी में पैदा हो रहा है या कोई इधर पैदा होता है, कोई पेडर रोड में भी होगा अपने अपने पूर्व इसके अनुसार। लेकिन मेन चीज ये है कि ये सत्व रज तमो के इस व्यापार में कोई शाश्वत शांति नहीं है, देयर इज नो परमानेंट हैप्पीनेस। तो समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कह सकता है कि मुझ पर ये गुणों का अमल नहीं चलेगा, अरे मैं नहीं जहां मानता उनको, एकमात्र कृष्ण के निवृत्त गुण, भगवान कृष्ण बताते हैं इस सेकंड लाइन में, निवृत्त गुण वृत्त ये, आई एम नॉट कवर्ड। तो कितना पावरफुल आदमी होना चाहिए, आदमी या व्यक्ति, कि ये पावरफुल गुण उनको छू नहीं सकते। त्रिभीर गुणमय रे भी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जानाती
मामेभ्य परम।
ये तीन गुणों के कारण ही लोग अंधकार में रहते हैं और ये तीन गुणों के कारण ही वो कृष्ण को देख नहीं सकते। और भगवान कहते हैं कि मैं इनकी परम हूं, मुझे ये गुण कुछ नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। तो आज हम यहीं पर रुक जाएंगे, टाइम हो गया है। अगले बुधवार से आगे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की। किसका कोई प्रश्न है? हमारे पास 2 मिनट होंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी मामला है कि अगर भक्ति शुद्ध है तो सत्वगुणी भक्ति कैसे है, रजोगुणी भक्ति कैसे है, तमोगुणी भक्ति कैसे है? तो इसका एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये तीसरे स्कंद में आता है विषय। कपिल मुनि बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर पृथक भाव से, बोलते सेपरेटिस्ट भाव, ये सेपरेटिज्म क्या है कि भक्तों के बीच में भेद देखना या अपने आप को जरा अधिक प्रगत समझना, नम्र न होना, ये थोड़ा सा कंडीशनिंग, थोड़ा सा एक क्या बोल सकते हैं उसको, अनर्थ या एक प्रकार का डिफेक्ट जो भौतिक जगत का है, वो हम एक प्रकार की ये बैगेज है जो हम अभी तक लेके आए हैं। जैसे ये कमरा एकदम अच्छे प्रोग्राम के लिए बनाया है, फूल हार सब लगाया है कहीं इधर, और कोई एक व्यक्ति, एक पेशेंट आ गया और उसने अपना बैग खोला तो उसके अंदर कुछ दुर्गंधी है, बहुत पुराने वस्त्र हैं या सड़ीली चीजें हैं कुछ, तो हम कहेंगे इसको फेंक दो फेंक दो फेंक दो, इसको बाहर फेंक दो। वो कहेगा नहीं नहीं ये मेरी बैग है, ये मेरे साथ ही रहेगी। तो वो व्यक्ति हमको प्रिय है, उस व्यक्ति के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन उसका जो ये बैग है ना, उसके अंदर बहुत दुर्गंधी वाली चीजें हैं। तो इसलिए कभी कभी थोड़ा टॉलरेट करके, अगर उसको समझ में आएगा कि ये मेरा बैग है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो खुद उसको फेंक देगा तो बेस्ट। लेकिन कई बार ऐसे नहीं होता, हमारी कंडीशनिंग, हमारे अनर्थ, जब तक हम अपने आप को ईमानदारी से, प्रामाणिकता से अपने आईने में देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन अगर हमारे आईने पर ही अगर वो कोटिंग है धूल का, तो हमें धूल ही दिखाई देती है। तो प्रभु जी पूछते हैं कि इसका, ऐसे भक्तों की गति क्या होती है। मैंने इसके बारे में ज्यादा सुना नहीं है, लेकिन इतना ही ये सुना है कि भगवान इस भौतिक भक्ति की प्रोसेस में, भक्ति की प्रक्रिया में इतनी शक्ति है कि ये प्रोसेस प्यूरिफाई करती है। अंत में चाहे व्यक्ति कितना भी रजोगुणी भक्ति कर रहा हो, तमोगुणी भक्ति कर रहा हो, ऐसा नहीं होता कि उसको बार 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 जन्म लेने पर, अभी इस जन्म में तमोगुणी भक्ति, फिर उसके बाद रजोगुणी भक्ति, फिर 10 जन्म के बाद, नहीं ऐसा नहीं होता। भगवान कृष्ण जो बैठे अंदर, ज्ञान दीपेन भास्वत, भगवान स्वयं अंदर से एटलीस्ट वो नॉलेज तो देते हैं कि ये आप जो कर रहे हैं ये आपके लिए अच्छा नहीं है, उतना तो पता चलता है। और भक्ति के प्रोसेस की जो शक्ति है, इस विधि की शक्ति से, जो खास करके भगवान का स्मरण, हम तो रोज इस प्रार्थना को बोलते हैं, यह स्मरित, किसी भी अवस्था से कोई गया हो, सर्वावस्थाम गतोपीवा, यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सब भाइयाभ्यंतर शुचि। तो इतना हमको एक भगवान की तरफ से आश्वासन है, इफ वी आर डिटरमिंड देन वी कैन स्टिल से इन इल्यूजन। लेकिन और कई बार ऐसे दिखते भी, मतलब दिखा जाता है कि कोई व्यक्ति का भक्ति में इंटरेस्ट है, सोलामाला कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बाकी नेचर थोड़ा सा रजोगुणी है या तमोगुणी भी हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ देयर लाइफ दे आर प्यूरिफाइड, क्योंकि ये प्रोसेस शक्तिशाली है। भागवत में जो ये बताया गया है भक्ति अगर तीन गुणों में होती है तो उसका मतलब ये हमको डराने के लिए नहीं है, क्योंकि भक्ति में आने के बाद एक ढंग से देखा जाए तो विशेष कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती सतोगुण में रहने की। नाम दिव्य है, प्रसाद दिव्य है, विग्रह दिव्य है, भजन कीर्तन सब दिव्य है। एक भक्त बता रहे थे कि जैसे आपने फास्ट ट्रेन पकड़ के रखी है, विरार फास्ट यहां से जा रही है, चर्च गेट एक घंटे में पहुंच जाएंगे, आप ट्रेन में तो भागते नहीं ना, दौड़ते नहीं कि जरा इधर भी दौड़ूंगा तो गाड़ी और जल्दी पहुंच जाएगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार ट्रेन पकड़े तो अंदर खाली बैठे रहो, बस वहां से गिरो नहीं। लेकिन जिसने ट्रेन कैसे पकड़ी है कि वो छत के ऊपर बैठा है, वो थोड़ा डेंजर है। तो छत के ऊपर बैठना होता है तमोगुण, कोई लटक रहा है दरवाजे में वो रजोगुण, जो अंदर बैठा है वो सत्वगुण, वो तो सेफ है। हालांकि तीनों लोग पहुंचते हैं चर्चगेट में, लेकिन कभी कभी अगर ऊपर बैठने वाला थोड़ा सा हरे कृष्णा लोगों को सब क्या मालूम है, उनको लगता है कि हम कुछ बहुत वीर हैं या बहुत शूर वीर हैं, ऐसे कुछ वहां से कोई फिसल जाएगा। जैसे रेलवे कहेगी कि ये इतनी अच्छी गाड़ी बनाई है, इसमें से कोई डर नहीं बाहर करने का, तो क्यों आपको ऊपर रहना है? तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है जो फुटबोर्ड पे ट्रैवलिंग कर रहा है या ऊपर छत पर ट्रैवलिंग कर रहा है, दे आर इन डेंजर, कुछ अपराध करेंगे। या भक्ति, भक्ति बहुत शक्तिशाली प्रोसेस है ना, वैसे 24,000 वोल्ट लगता है ऊपर, तो वहां अगर हाथ लग गया तो फिर गड़बड़े। तो तमोगुणी नेचर लेके अगर किसी का अपराध कर दिया, नॉर्मली तमोगुण में क्या होता है, देयर इज इग्नोरेंस, यू डोंट नो हुज हु, व्हाट्स व्हाट। तो किसी एक भक्त से कहा कि एक डिवोटीज के साथ अपराध का मतलब है उनको जाति को देखना, शरीर के दोष को देखना। तो ये अगर किसी ने किससे कहा कि ये इस प्रदेश का भक्त है, ये तो ऐसा है वैसा है, चलो प्रभुपाद तो कहते हैं कि अमेरिकन वैष्णव है, यूरोपियन वैष्णव है, ये बंगाली वैष्णव है, ये बिहारी वैष्णव है, ये भी एक प्रकार का दोष है। तो ये दोष देखने से फिर वो अपराध होता है, और इतने अच्छे भक्त का अगर आपने अपराध किया तो फिर भगवान उसको क्षमा नहीं करेंगे। वैसे नॉर्मली आप वायर को टच नहीं करते, लेकिन उधर आप ऊपर हो और गलती से उठ गए और टच हो गया, शॉक लगता। सो नॉर्मली स्पीकिंग द प्रोसेस प्यूरिफाइज यू, एट द एंड ऑफ द डे यू आर इन गुड हैंड्स, आपको ऐसे कुछ, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स टू डू समथिंग। बट रजो एंड तमोगुणों में यू कैन डू समथिंग एक्सीडेंटली एंड गेट बर्नट। माय टू सेंट्स वर्थ। धन्यवाद श्रील प्रभुपाद की, श्री राधा गोपीनाथ की, ताई गौर प्रेमानंदे, धन्यवाद।